टू माय पॉडकास्ट सारथी। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, समीरा सचदेव। समीरा सचदेव ने अपनी मास्टर्स करी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। वो IICF एक्रेडिट माइंड वेलनेस कोच हैं और इसके साथ ही वो ग्रीफ और लॉस थेरेपी में स्पेशलिस्ट हैं। सो वेलकम समीरा, आप कैसी हैं आज?
थैंक यू, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग मी एक्चुअली एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।
थैंक यू सो मच समीरा। सो समीरा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पॉडकास्ट है ये डोमेस्टिक वायलेंस जो सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनके लिए है। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे उसी के आसपास होंगे और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हम उन्हीं के बेनिफिट के लिए हम जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि बहुत सारे लोग नहीं समझते कि माइंडफुलनेस क्या है। रिलेटिवली ये जो वर्ड है अभी सुनने में ज़्यादा आने लगा है, तो अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं समीरा।
ओके, सो माइंडफुलनेस एक साइंटिफिकली और एम्पिरिकली प्रूव्ड प्रैक्टिस है। इस समय इस पे बहुत रिसर्च करी गई है, सिंपली बिकॉज जबकि ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर डिप्रेशन, लेकिन अब इस टाइम पे इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस माना जाता है फॉर थ्रू आउट ऑल एजेस और ऑल जेंडर्स एंड ऑल प्रोफेशंस। और उसका रीजन ये है कि माइंडफुलनेस बहुत सिस्टमैटिकली हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे aspects create karti hai, jaise non-judgmental living, non-strivingness, self-compassion, jo ki hamare ko life mein challenges, jo hum face karte hain, unko deal karne ke liye hamari resilience badhaye, right? जो रीजन है उसका वो ये है कि जब यूजुअली हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, किसी बहुत लाइफ की किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो हमारा जो इंटरनल, लेट्स से हमारा जो इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम है या सिक्योरिटी सिस्टम है ब्रेन का, वो हमारे को हमारे ब्रेन के उस हिस्से में ले आता है जिसका काम होता है हमें बचाना। तो वो या तो फ्रीज हो जाएगा या वो फ्लाइट करेगा या वे एकदम से फाइट करेगा, ठीक है? तो सब कुछ उसी हिसाब से होता है। आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, आप बहुत या तो आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, या आप एस्केप करने की कोशिश करते हैं, है ना? मतलब लाइफ में आप यूजुअली ऐसा नहीं कर पाते हो, जब ट्रॉमा हो रहा होता है तो ये चीजें बड़ी मुश्किल है, इनको एग्जीक्यूट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो माइंडफुलनेस एक तरीका है जो विच गिव्स अ ब्रेक, मतलब एक ब्रेक देता है वो, और आपको आपको ये एबिलिटी देता है कि आप अपने पूरे ब्रेन को यूज कर सके। और हमारे ब्रेन, हमारा ब्रेन बहुत ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड है। इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी थिंग, जो भी हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं उसको डील करने के लिए वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि हम किस तरह से अपने आप को अप्रिशिएट करें, किस तरह से अपने आप को कंपैशन दें। हमारा ब्रेन जानता है हमें कब हग्स की जरूरत है, कब हमें किसेस की जरूरत है, कब हमारे को एक एक्शन लेने की जरूरत है। तो माइंडफुलनेस वो एक तरीका है जो पूरे ब्रेन को आपके लिए एक्टिव कर देता है। सो आपके फोकस जो होता है वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने की बजाय पूरी तरह से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की शक्ति देने के लिए या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है? सो दैट्स माइंडफुलनेस, इट ब्रिंग्स यू इन द वेरी मच नाउ। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि हम अपने पास्ट में रह जाते हैं, तो काफी ऐसे विश्वास बना लेते हैं अपने बारे में जो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जब पहले कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। तो माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में ले आता है और आपको आपके रियल रिसोर्सेस दिखा देता है कि दैट दिस इज, आपने अगर कुछ प्रॉब्लम्स झेली भी हैं तो आप दैट डजंट डिफाइन यू, वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है. आपको जो डिफाइन कर रहा है वो आपका आज है, और वो आपका आज होलिस्टिकली आपको दिखाता है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं बट एक होलिस्टिक मेजर. सो दैट्स माइंडफुलनेस.
थैंक यू. सो समीरा, आपने बताया कि यू नो हर जेंडर के लिए, हर प्रोफेशन के लिए है, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो पहला तो जहन में, दिमाग में यही आता है कि एक औरत के साथ हो रही है, बट आज ऐसा नहीं है. यू नो आदमियों के साथ, मर्दों के साथ भी उतनी ही हो रही है. तो क्या ये प्रैक्टिसेस इक्वली दोनों जेंडर्स के लिए यूजफुल हैं और यू नो उतना ही बेनिफिट देती हैं, या एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए बनी है? अगर आप थोड़ी सी इस बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी.
इसके लिए जानना जरूरी है कि माइंडफुलनेस काम कैसे करते हैं ना. लाइक आई टोल्ड यू दैट माइंडफुलनेस आपके ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, कि आप इमोशंस को कैसे एक्सेप्ट करते हो, आप अपने पूरे ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करते हो, राइट. सो दोनों, हम एक आदमी और एक औरत का जो दिमाग होता है उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. Like for example, small difference, there are few differences, kuch 4-5 differences hain, but kuch jo bade important differences, unme se ek batati hu. Jaise for example, jo aurte hoti hain, unka jo dimag ka jo communication ka jo hissa hota hai, language ka, usko samajhne ka, usko you know, आगे इमेजिन करने का या उसको विजुअलाइज करने का जो एबिलिटी होती है वो लड़कियों में या औरतों में ज्यादा होती है. आदमियों में वही एबिलिटी काफी लिमिटेड होती है, इसलिए आदमी इतना बोलते नहीं है, करेक्ट, और इतना इमोशन उनको इतने वर्ड समझ में भी नहीं आते. अब ज्यादा वर्ड बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इम्पैक्ट दोनों पर इस प्रैक्टिस का, एज इन माइंडफुलनेस का, सेम होता है, तरीका डिफरेंट होता है. सो मैं मेनेक्स स्पीकर की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक माइंडफुलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, और वहां पे हम जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली मेन के लिए डिजाइन करते हैं हम लोग, ताकि हम उनके ब्रेन स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे इम्पैक्ट कर सके. Or this is one of the things that one needs to remember. So the impact is same, but the uska methodology different.
ये बहुत important point आपने बताया कि you know specialized techniques use कर रहे हैं आप, customize करके, you know दोनों genders के लिए. But important ये है कि तरीके अलग हो सकते हैं, techniques अलग हो सकती हैं, पर जो इम्पैक्ट है, जो बेनिफिट्स है, वो दोनों के लिए सेम है. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई है समीरा. सो समीरा, ज्यादातर यू नो जब हम डोमेस्टिक वायलेंस से विक्टिम्स को डील करते देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, सो बहुत कॉमनली एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स एंड एक सेंस ऑफ फियर, और उसके अलावा कुछ में यू नो माइल्ड डिप्रेशन से सिवियर डिप्रेशन भी हो सकता है. तो ऐसे विक्टिम्स जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके बारे में कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस यू नो जो स्पेसिफिकली यूज हो पाए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में हमें बताएंगी?
जरूर. ऑफ कोर्स हर एक क्लाइंट, हर एक इंडिविजुअल का एक अपना रीजन होता है टू फील डिप्रेस्ड. मेरी मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ. द वे आई डिफाइन डिप्रेशन या ट्रामा से रिलेटेड पैनिक या ट्रामा से रिलेटेड एंजाइटी इस, जब हम सब हीलर्स होते हैं, हम सब अपने आप को हील कर सकते हैं. हमारी बॉडी में एक हीलर बैठा हुआ है जो हमें हील कर सकता है. लेकिन जब हम यू नो व्हेन हम अपने आप को शट ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते हैं, और बाहर ज्यादा हमारा बिलीव है कि कोई और हमें ज्यादा अच्छे से हील कर सकता है, या फॉर दैट मैटर नॉट इवन दैट, आई मीन किसी और पे डिपेंड होना अपनी हीलिंग के लिए इज नॉट अ बैड आइडिया, बट अगर हम किसी और के ऊपर इसलिए डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन मिलती है तो हम हील होते हैं, यू नो, या कोई और हमारी जिंदगी के फैसले लेता है तो हमें इजी लगता है क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ रही है, तो हमारा जो अंदर का हीलर होता है वो चिल्ला चिल्ला के बेचारा थक जाता है, और जब वो थक जाता है ना तब इंसान डिप्रेस हो जाता है. दैट्स हाउ आई डिफाइन डिप्रेशन एंड एनर्जी टर्म्स, कि आपका हीलर थक गया, आपने अपने हीलर को सुना नहीं है, वो उदास हो गया. राइट, सो हर किसी का अपना रीजन होता है कि वो अपने आप को क्यों नहीं सुनते. कुछ लोगों को अपने आप को माफ करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अपने आप के लिए कंपैशन नहीं होता, प्यार नहीं होता, जिसे हम कहते हैं सेल्फ लव नहीं होता. कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो इस लायक ही नहीं है कि वो अपने आप को प्यार करें. उससे कितने लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि शीशे के सामने खड़े हो जाए और सिर्फ ये बोल दें आई लव यू एवरी डे टू योरसेल्फ. मैं अपने बच्चों को एज अ कॉन्शियस प्रैक्टिस ये सिखाती हूँ कि वो शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप को अपना नाम लेके बोले दैट दे लव देमसेल्व्स, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है. अब अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब चीजों के लिए फॉर्चुनेटली माइंडफुलनेस के पास प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिसेस टू अंडरस्टैंड, यू नो, जैसे सेल्फ लव या सेल्फ कंपैशन की जो प्रैक्टिस है, इट्स अबाउट कि हमें किस तरह से अपने आप को, हाउ डू यू सी योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी अपनी इमेज क्या है आपके सामने. ना इसीलिए माइंडफुलनेस कैन बी डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वेज आल्सो. आप माइंडफुलनेस आर्ट की तरह भी कर सकते हैं. तो जैसे जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करनी है, आप आर्ट भी कर सकते हैं. तो जैसे एक प्रैक्टिस हम लोगों को सिखाते हैं कि बताइए, ये एक तरीका होता है अपने आप से मिलने का. तो हम दो मास्क देते हैं और बोलते हैं कि अब इस मास्क में आप अपने आप को ड्रॉ कीजिए जो आप अपने लिए हैं, और एक मास्क में आप अपने आप को ड्रॉ कीजिए जो आप दुनिया के लिए हैं. सो इट गिव्स यू गुड आइडिया कि आप कितना दूर हैं फ्रॉम व्हाट जो आप लोगों को दिखा रहे हैं और ऐसा क्यों है. यू सी, अगर आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, असलियत में नहीं करते, या असली में आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी, यू नो, मैं इतनी बड़ी विक्टिम हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो वो गैप क्यों है, यू नो. वो माइंडफुलनेस ये एक टेक्निक है जिससे आप बहुत क्लियरली अपने आप को देख सकते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी रियलनेस को, और फिर इसको जो है थेरेपी के थ्रू और प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी सेल्फ लव को आप बढ़ा सकते हैं ताकि वो दोनों मास्क एक जैसे हो जाए. दिस इज हु आई एम अपने लिए और दूसरों के लिए, व्हाई नॉट. सो ये एक तरीका होता है. फिर उसी तरह से जैसे हमें जब हम लेट गो नहीं कर पाते या हम मूव ऑन नहीं कर पाते, मूव ऑन ना करने बहुत रीजन होते हैं. एक होता है कि हम अपनी विक्टिमहुड में रहना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ और एंड वी गेट स्टक देयर, लेट्स कॉल द विक्टिमहुड. विक्टिमहुड बहुत ब्यूटीफुल जगह होती है, उसमें इसी मेरे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मेरे साथ तो बुरा हुआ ना, तो मैं बाहर नहीं निकलना चाहती, मुझे डर लगता है बाहर और गंदा होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ बुरा हो चुका है. तो सो लेट गो जो होता है वो हम, इसका एक रीजन होता है कि हमको विक्टिमहुड की आदत हो जाती है. तो एक तरीका होता है कि आप विक्टिमहुड से माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने आप को सेल्फ कंपैशन देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, यू नो, देयर इज, आपके पास कोई पावर नहीं है अगर आप विक्टिम बन के बैठे हैं, तो आपकी पावर उसके बाहर है. और यू नो, माइंडफुलनेस के थ्रू आप उनको बाहर निकालते हैं विक्टिमहुड से, सो दैट लोग लेट गो कर सके. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस. इट्स लाइफ में अगर कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं, माइंडफुलनेस इज अ लाइफ स्किल है, मतलब जरूरी नहीं है कि जिंदगी में आपको कुछ बहुत प्रॉब्लम होनी चाहिए जब आप माइंडफुलनेस करें. आप जिंदगी में वैसे ही माइंडफुल रह सकते हैं क्योंकि ये बहुत इट्स अ लाइफ स्किल.
अपना हिस्सा बना लेना चाहिए रोज की जिंदगी का. और जरूरी नहीं कि हम किसी बहुत बड़े कुछ होने का ही इंतजार करें. सो आज अभी से हम सभी माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं.
जी बिल्कुल.
समीरा, जैसे आपने बोला कि आप प्रैक्टिस करती हैं, आप कोच भी हैं, और कोई एक केस आपने कभी किसी विक्टिम जो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम रहा हो या अब्यूज का विक्टिम रहा हो, आपने उनके साथ डील किया और माइंडफुलनेस को यूज किया हो प्रैक्टिसेस को, तो कुछ अपना उस विक्टिम के बारे में थोड़ा सा उस जर्नी को शेयर करना चाहेंगी? कुछ विक्टिम्स आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिंदगी में, कुछ केसेस जो बहुत इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसा केस जो हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करेगा, कुछ ऐसा केस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ?
Yeah, I'll just share the case study. क्योंकि किसी का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, ज्यादा डिटेल्स भी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बता देते. तो this person is a 39-year-old woman, and जब वो आई थी तो काफी परेशान थी क्योंकि उनके पास उनके हस्बैंड काफी इमोशनल अब्यूज कर रहे थे उनके साथ, चीटिंग भी कर रहे थे और सब ब्लेम गेम चल रहा था अच्छे से. एंड काफी परेशान थी वो, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम हमारे जो पार्टनर्स होते हैं या हमारे जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, वो इसीलिए क्लोज होते हैं क्योंकि हमने उनके ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट डाला होता है. वी पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन इट. ट्रस्ट के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस आती ही हैं, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको रोकना मुश्किल है. आप ट्रस्ट बनाते इसीलिए हो ताकि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सको और वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सके. तो इन केसेस में क्या होता है, जहां पर पार्टनर्स के साथ या लॉन्ग मैरिजेस के बाद पता चलता है दैट ओ मैं तो इमोशनली अब्यूज्ड हो रही थी या मैं एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी. क्योंकि जब हम ऐसी पार्टनरशिप्स में होते हैं तो हम इतने मैन्युपुलेट हो चुके होते हैं कि हमें कई बार समझ में भी नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ अब्यूज हो रहा है. हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके. फिर जब कुछ बड़ा हो जाता है तो हम चलते हम तो अब्यूज हो रहे थे. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इस इन सिचुएशंस में, वो ये होता है टू क्रिएट अवेयरनेस के हाँ ये टू डिफाइन कि ये अब्यूज है. किसी भी तरह का पावर अगर आपके ऊपर यूज किया जा रहा है ताकि आप वो करें जो कोई और चाहता है और वो ना करें जो आप चाहते हैं, या आपको वो वैलिडेशन ही ना मिले लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि कोई और आपको वो वैलिडेशन नहीं देना चाहता और आपको इनवैलिडेट ही करते जा रहा है, वो अब्यूज है. और होता क्या है आजकल, अब्यूज भी काफी रिफाइन हो गया. पहले क्या होता था, लोग अनपढ़ होते थे थोड़ा, तो एक क्लियर अब्यूज डेफिनेशन हो जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट करके कि मारा तो अब्यूज है, नहीं मारा तो नहीं. आजकल क्योंकि लॉज हैं, है ना, एंड औरतें भी थोड़ी पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो सबको मालूम है कि एकदम तरह से खुले में नहीं कर सकते हैं. कई बार मेन डोंट इवन नो और वुमेन डोंट इवन नो दैट एक्चुअली अब्यूजिंग. कई बार दे नो बट हम एज ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे से अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि कई बार मेन इतना कुछ इसलिए कर जाते हैं और फिर अपने आप को बोल देते हैं कि यार मैं तो अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता हूँ, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं इतना परेशान रहता हूँ, तो अगर मैंने गाली दे दी या मैंने कुछ बोल दिया या मैंने अपना पावर दिखाया या मैंने तुम्हें कंट्रोल कर दिया तो व्हाट इज इट बिग डील, है ना। तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज कराना बहुत जरूरी होता है इंडिविजुअल को कि किसी भी रीजन की वजह से आपको अब्यूज होना टॉलरेट नहीं करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो एक अच्छा रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, जो भी है, वी आर नॉट सेइंग दैट, लेकिन वी आर डेफिनेटली सेइंग कि उसको कम से कम एक 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 वैलिडेशन देना हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स मुझे अप्रोच करते हैं, बहुत जरूरी है कि उनका ग्रीफ, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सैडनेस वैलिडेटेड है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस कॉल जिसमें हम सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करते हैं कि यू नो सबसे पहले आप खुद को वैलिडेट कीजिए कि इट्स ओके दैट यू कि आप सैड फील कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। कि कुछ लोग, कितने लोग तो यही सोचते कि उनके साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, विच इज सच अ सैड स्पेस टू बी इन कि आपको लग रहा है कि आप कोई भी इंसान बुरी तरह से ट्रीट होना डिजर्व नहीं करता है। अब ये बात बहुत बड़ी है कि हम लोग कितनी आसानी से सोच लेते हैं कि नहीं यार अगर कोई सड़ा हुआ तो सड़े रहने दो या कोई परेशान है तो रहने दो, डिजर्व करता है। अच्छा, कोई भी नहीं डिजर्व करता है, हम सब खुशी डिजर्व करते हैं। तो अगर कोई इंसान आपको वो नहीं देने दे रहा है और तो वो सबसे पहले आप खुद हो, सो माइंडफुलनेस सबसे पहले आपको उस स्पेस पे लाता है जहां पे आप इमोशनली अपने आप को रेगुलेट करते हो और इंडिपेंडेंट करते हो ताकि आप खुद को खुश रख सको। अच्छा, और ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आप अपनी पावर हर एक एक्सटर्नल सोर्स से वापस ले रहे हो और कह रहे हो कि मेरी जिंदगी का जो वो है, एम है, वो ये है कि मैं कितना इमोशनली सैड रहूंगी या नहीं सैड रहूंगी वो मेरी डिसीजन पे बेस्ड है, क्योंकि वो पावर मेरे अंदर है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग एंड दैट्स हाउ टू प्रैक्टिस स्टार्ट।
तो आपने ये जो विक्टिम है उनके साथ ऐसे ही जर्नी को शुरू किया।
जी okay. इसमें काफी विल पावर चाहिए होती है क्योंकि वेरिएबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बाहर के, है ना, और हम सबको विक्टिम्स अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं, ऐसे परेशान दिखें, वो हमें ज्यादा हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज आउटसाइडर्स। तो जब आप अपनी पावर लेने लग जाते हैं तो सबसे पहले लोग जो होते हैं वो वियर्ड होना शुरू हो जाते हैं, वियर्डली बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, भाई इससे क्या हो गया है इन्होंने। सो उस टाइम पे इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव देम द पावर ऑफ रेजिलियंस। सो द नेक्स्ट स्टेप इज माइंडफुलनेस फॉर रेजिलियंस, कि आप अपने अंदर बाउंस बैक करने की शक्ति लाएं। यू सी द नेक्स्ट इज, अब मेरे अंदर पावर आ गई है और मैं इमोशनली रेगुलेटेड हूँ, तो मेरे को नेक्स्ट क्या है, मुझे अपना अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना है। सो द नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमने उनके साथ की थी वो थी माइंडफुलनेस फॉर होप, कि हम होप जो होती है वो बहुत हम अंडर एस्टिमेट करते हैं होप को, हमें लगता है होप तो ऐसे ही है। होप एक्चुअली एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, जैसे कंसेंशियसनेस है, राइटियसनेस है, रेजिलियंस है, परसिवेरेंस होती है, उसी तरह से होप भी एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती है। दो तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, जो ऑफिस जाते हैं और इसलिए ऑफिस जाके मेहनत करते हैं ताकि उनकी नौकरी ना चली जाए, और फिर दूसरी तरह के लोग होते हैं जो इसलिए ऑफिस जाके मेहनत करते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिलेगी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। दोनों लोग मेहनत करते हैं, एक डर की वजह से करते हैं, एक प्यार की, यू नो लव फॉर देयर वर्क की वजह से करते हैं, हैप्पीनेस फॉर देयर वर्क, है ना। किसके लिए काम करना आसान है, जो पॉजिटिव ओरिएंटेशन के साथ जा रहा है, डर के साथ नहीं जा रहा है, जस्ट इमेजिन अगर आप रोज काम करने जाओ, रोज यही सोचो कि भैया मेरी तो नौकरी चली जाएगी जो मैंने काम नहीं किया, कितना मुश्किल है वो। उस तरह से आप रोज एक रिलेशनशिप में जाओ और ये सोचो कि अरे मैंने ये नहीं किया तो मेरी मेरे को तो कुछ सुनने को मिल जाएगा, दैट्स कॉल्ड वॉकिंग ऑन एग्जाम्स, कितना मुश्किल है ये काम। सो हम इस एस्पेक्ट को चेंज करते हैं अगर कोई ये चूज करता है कि वो उस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। सपोज अगर आप काम अगर आप यू नो आपको लगता है कि और कुछ नहीं हो सकता है, जैसे उन्हें लगा कि वो और कुछ नहीं कर सकती हैं इसमें, तो देन हम उनको दिखाते हैं कि ओके नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग होप फॉर योर फ्यूचर, ताकि आप अपनी जो बाकी मेंटल स्किल्स हैं जैसे कि फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन पे काम कर सकें, तो हम उनके लिए होप क्रिएट करते हैं। होप क्रिएट करने के लिए इन सब चीजों पे काम किया जाता है। हाँ, आपकी होप कैसे बनती है? होप में एक एजेंसी होती है जो मतलब एक तरीका है कि आप अपने सेट इंटेंशन पे पहुंच जाएंगे। तो आप कैसे पहुंचेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेंगे, रिसोर्सेस अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है भाई, मैं किस चीज में अच्छी हूँ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे, फोकस बढ़ाएंगे, राइट? तो वो सब चीजों पे काम किया जाता है जब हम कहते हैं कि हम माइंडफुलनेस ऑफ होप पे काम कर रहे हैं, फॉर होप। और फिर आती है लास्ट स्टेज विच इज माइंडफुलनेस टू लेट गो। और जब हम लेट गो करते हैं तो लेट गो किस चीज से बना होता है? एक्सेप्टेंस से, दैट यस ये खत्म हो गया चैप्टर, दूसरा शुरू होने वाला है, दूसरा तो यू नो लेट मी एक्सेप्ट इट। हाँ मुझे पेन हो रही है, आई एम रियली इन इमोशनल पेन, लेट मी एक्सेप्ट दैट। हाँ दिस इज यस दिस लुक्स लाइक ये तो बड़ा अनफेयर था, ऐसे नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, तो वी एक्सेप्ट दैट आल्सो। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स फॉरगिवनेस एंड वी लेट गो। लेटिंग गो एक बहुत लंबा काम होता है। हम पूरी जिंदगी भी कई बार ही लगा देते हैं टू लेट गो क्योंकि चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्किल, लाइक आई सेड यू नो ऐसे जरूरी नहीं है जिंदगी में कि कुछ बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। आई थिंक लेट गो हमें यू नो किसी को एक डिटॉक्स पे चले जाना चाहिए लेट गो करने के, तो चीजें इकट्ठी हो ही जाती हैं यू सी जो हमें नहीं सर्व कर रही होती हैं। So that's how it works and that's what we did. So there are four phases of it that we went through, which is number one was to really know yourself. Dusra hai ke self-compassion create karenge, resilience create karenge, hope create karenge aur phir finally we let it.
So Sameera, aapne bahut hi acche se aur you know kaafi detail mein ye steps samjhaye hain aur aapne bahut important point bola ki ek to मॉडर्न वर्ल्ड में अब्यूज इतनी डिफरेंट दिखने लग गई है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट खत्म हो गया और इतने सारे शेड्स आ गए हैं कि आइडेंटिफाई करना कि अब्यूज हो रहा है वो अपने आप में एक काम बन गया है। सो यू नो आई थिंक इसका अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, यू नो जहाँ पे औरतें और इवन मर्द यू नो दे रियलाइज कि कब उनके साथ अब्यूज हो रहा है। और दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि एक्नॉलेज करना, बहुत बार होता है कि अब्यूज हो भी रहा होता है, शायद दिमाग कहीं बता भी रहा होता है, बट हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती है। हम सोच रहे होते हैं कि नहीं एक बार इग्नोर कर देंगे, शायद मेरा वहम है, यू नो बिकॉज हम इतना ज्यादा चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना और यू नो एडजस्ट करने की हमें इतनी आदत पड़ गई है कि कई बारी तो हम बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं जहाँ पे हमें शायद आवाज उठानी चाहिए, हम उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर करके इग्नोर करते रहते हैं और फिर एक दिन वो बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है, यू नो बहुत बड़ी चीज बन जाती है और फिर डील करना मुश्किल होता है। सो आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए समीरा इसमें, सो थैंक यू सो मच। एंड समीरा चलते चलते एक तीन मिथ बताइए जो मेडिटेशन सॉरी माइंडफुलनेस से रिलेटेड लोगों के दिमाग में है। हर चीज को लेके कुछ मिथ्स रहते हैं, तो माइंडफुलनेस से रिलेटेड भी कुछ मिथ्स हैं जो आप बताना चाहेंगी कि ये सब मिथ्स हैं, ऐसा सच में नहीं होता है, और चलते चलते आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए जो आज हमें सुन रहे हैं?
मिथ्स ही मेरे मैसेज होंगे, ठीक है। सो सबसे पहला मिथ ये होता है कि मैं जो जब लोग ट्राई करते हैं मेडिटेशन, यूजुअली लोग माइंडफुलनेस को मेडिटेशन समझते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन नहीं होती है. मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का, बढ़ाने का. और उसके बजाय माइंडफुलनेस कैन बी डन थ्रू डांसिंग. माइंडफुलनेस कैन बी डन थ्रू मतलब मैं हमेशा एक माइंडफुलनेस स्टेज पे होती हूँ, क्योंकि मैं जब बैठती हूँ तो मैं बड़ी माइंडफुली अपने सक्राल चक्र से ब्रीथ करती हूँ. सक्राल चक्र मेरी ईगो और डर को भगा देता है. जब मैं ब्रीथ कर रही होती हूँ और मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मैं एक बिजनेस चलाती हूँ, खूब काम करती हूँ. मेरे दो बच्चे हैं और दो फर बेबीज हैं, मेरे दो कैट्स भी हैं. काफी पूरे दिन में काफी डिसीजंस लेती हूँ मैं. और मैं हमेशा मुझे ऐसा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं एक माइंडफुलनेस स्टेज पे रहूं जहां मैं अपने सक्राल चक्र से ब्रीथ करूं, ताकि मुझे कभी भी डर ना लगे कुछ करने में. और जैसे ही कुछ डर लगने लग जाता है तो मुझे समझ में आ जाती है कि मैं स्लिप हो गई हूँ. सो माइंडफुलनेस सिर्फ ऐसे आंखें बंद ऐसे नहीं है कि तुमको 2-3 घंटे दिन में लगा के ऐसे बैठ के ऐसे बैठ जाओ कुछ मत करो बस बैठ जाओ, ऐसा नहीं है. ये एक सबसे बड़ा मिथ है माइंडफुलनेस का कि आपको 2-3 घंटे बैठना है और आपको आपको आंखें बंद कर देनी है और आपको जागते रहना है, फिर वो माइंडफुलनेस हो जाता है. नहीं, ऐसे You can be mindful while working on your laptop.
हाँ, जो शायद लोगों को बहुत कम लोगों को ये पता है, वो यही सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ करके ही माइंडफुलनेस होती है, बट करते हुए भी माइंडफुलनेस हो सकती है. ये
That's the point. अगर सिर्फ एक कोने में बैठ के आप सिर्फ माइंडफुल हो सकते हो तो उसका क्या फायदा है? बाकी सारे टाइम पर अगर आप माइंडफुल नहीं हो तो उसका क्या फायदा है? So that's the point. तो दूसरी बात जो लोग सोचते हैं माइंडफुलनेस के बारे में वो ये है कि मुझे बिल्कुल अपनी सोचना जो है मुझे खत्म कर देना है. You know, that's what mindfulness is. मेरा ब्रेन खाली हो जाना चाहिए. तो क्या हो गया, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं. जैसे कभी कभी जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट, तो मुझसे पूछते बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं हंसती हूँ उनके ऊपर. तो इसी तरह से मैं इस बात पे भी हंसती हूँ. ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ मत सोचिए. हम आपको एक्चुअली यू नो व्हाट हम कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आपका माइंडफुल है. यू सी, हम आपको हर एक वो चीज जो आपके माइंड में है उसको फील करने के लिए कह रहे हैं एक्चुअली, पर उसका एक तरीका है. वी हैव अ वे टू डू इट. हम यूजुअली उसके लिए एक एंकर बना देते हैं, या तो वो एंकर ब्रीदिंग होती है, या वो आर्ट होती है, या डांस होती है, या म्यूजिक होती है, कुड बी एनी. लेकिन एक एंकर होना चाहिए और उसका एक कॉल टू एक्शन. आजकल लोगों की भाषा ज्यादा समझ में आती है, SMM लोग, यू नो, लोग सोशल मीडिया बहुत अभी वो होगी. एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि हमारी इंटेंशन क्या है. हम आज यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल, जब कभी कभी मैं जब बैठती हूँ, या मैं जब माइंडफुल हो रही होती हूँ, या मैं जब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस लेट्स से कर रही होती हूँ, तो मैं एक इंटेंशन लेके बैठती हूँ कि आज मैं इस चीज के बारे में अपने आप को असेस करना चाहती हूँ, या असेस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ, रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ. और मैं उस इंटेंशन के साथ बैठती हूँ एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रीदिंग. और यू सी, माइंडफुली मैं उस एस्पेक्ट को अपनी लाइफ के और लोगों को जो उस एस्पेक्ट में है सारे पर्सपेक्टिव देखती हूँ, है ना. सो माइंडफुलनेस इज नॉट अबाउट अगर अपना दिमाग खाली करना है, ऐसे नहीं है. एज अ डंप, आपके दिमाग का काम है सोचना. आप कैसे उसको रोक देंगे? लोग, भगवान ना करे वो कभी रुक जाए. पता है डिमेंशिया होता है एक्चुअली, अगर आपका दिमाग सोचना बंद कर दे तो प्लीज उसको मत ऐसे बोलिए कि ना तुम सोचना बंद कर दो, बोलो भी मत ऐसे. ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट है. दूसरी बात, तीसरी बात, जो तीसरा जो मिथ है लोगों के पास माइंडफुलनेस को लेके, वो है एज. कि भी जब बुढ़े हो जाओ तब माइंडफुलनेस करना चाहिए, अभी हम तो जवान है.
ये मिथ तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को लेके है समीरा. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए हैं, एंड यू नो हम यंग हैं, हम हेल्दी हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है. बट आई थिंक वो सोच को बदलने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल स्ट्रेसर्स जिंदगी में बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं.
हमेशा से शुरू होते थे, अब हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एक तो हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है स्ट्रेसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी है जी, हमें ये भी पता चल गया है, हमारे को सारी फार्मास्यूटिकल्स वाली कंपनीज ने बता दिया है स्ट्रेस लोगे तो ये डिजीजेस हो जाएंगे, तो लोगों को डर भी लगता है यूसी. दूसरी बात, स्ट्रेसेस हमेशा से थे, क्या बात करते हो, अब जब हम हंटर एज में थे जहां हमें यही नहीं पता था कि खाने को मिलना है नहीं, कितना बड़ा स्ट्रेस है, आज की डेट में हमें ये तो पता है ना फ्रिज में खाना पड़ा है. So, देखा जाए so we have a lot of technology to help us but still you see हमें इतना स्ट्रेस इसलिए क्योंकि हमें बता दिया गया स्ट्रेस लगे तुम बीमार. किसी दिन मैं आपके साथ जरूर बात करूंगी कि how stress is good for your health but for now we talking about mindfulness. So the third myth is के भी जब बुढ़े हो जाओ तब mindfulness करो. देखो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम ये सब चीजें करते हैं, हम डाइपर पहनते हैं क्योंकि हम बाथरूम नहीं जा सकते, हम शुगर नहीं खाते क्योंकि यूजुअली शुगर से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और हम जब बुढ़े हो जाते हैं तो हम ज्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा बोन मास कम हो चुका होता है, मेनी अदर थिंग्स हैपन टू अस, कॉग्निटिवली भी हम उतने अलर्ट नहीं रहते हैं. आई गेट इट, बट माइंडफुलनेस का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है. माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस जो आपको ये सिखा रही है कि आप अपना फ्यूचर बढ़िया कैसे बना सकते हो या आप अपने प्रेजेंट में कैसे जी सकते हो ताकि आपका फ्यूचर बहुत कॉन्शियस हो जाए. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को इस चीज की जरूरत है तो वो है यंग people, young adults and youth and students, right? Mindfulness हमें सिखा रही है कि हमें clarity of mind कैसे achieve करनी है ताकि हम बढ़िया you see decisions ले सकें और problem solve कर सकें बिना फालतू के डरों के. मुझे नहीं लगता कि कोई अगर अपनी लाइफ की एंड में है तो उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं. ये डिसीजन, ये काम एक यूथ, एक स्टूडेंट को करना जरूरी है. एक यंग एडल्ट जो अपनी करियर बनाने वाला है या जॉब चेंज करने वाला है या स्टडी लाइन चेंज करने वाला है या शादी करने वाला है, उसको जरूरत है इसकी, है कि नहीं? सो ये दिस इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है. मतलब हम कह रहे हैं कि यू सी हम ये हमें ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन लुक्स लाइक इस प्रोडक्ट में यू सी हमने इसको ना वो कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया है, हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे कि हमें इसके सारे बेनिफिट्स चाहिए हमें, लेकिन हम फिर भी ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ये प्रोडक्ट हम किसी और को दे देंगे जिसको इसका इतना बेनिफिट नहीं है
जी.
So this is weird for me. So therefore it's a big myth. And agar koi, matlab I hope ye bahut log sune aur is baat ko samjhe ki aapko clarity of mind life mein kab chahiye hoti hai. Isi decision making aapko kab apni badhiya karni hai, kab aapko resilience chahiye sabse zyada, kab aap sabse zyada hopeful hona chahte ho apni life mein,
ji
kab aap apne daron ki waat lagana chahte ho, let's say you know kab. So, अगर आपको लगता है कि जब आप 60-70 साल के हो जाएंगे तब आप अपने डरों से डील करेंगे तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्दी डील करना चाहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ बिना डर के जी सकें. So, that's all I'm trying to say.
बहुत बढ़िया समीरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इन बातों को, तो मेरे जो सुनने वाले हैं उनके लिए यही मैसेज है कि ना तो हमें बूढ़ा होने की जरूरत है, ना ही हमें कोई सही वक्त या गलत वक्त ढूंढने की जरूरत है, आज और अभी से ही शुरुआत करने की जरूरत है. और माइंडफुलनेस एक लाइफस्टाइल चेंज है, इसे अडैप्ट करने करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है. सो समीरा थैंक यू सो मच. तो जाते जाते मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि समीरा एक प्रैक्टिशनर है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो समीरा क्या अपनी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? और चलते चलते मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगी कि अगले सेशन में, अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें समीरा हमें एक बार फिर से ज्वाइन करेंगी और एक हमें वो सेल्फ कंपैशन और डी-स्ट्रेसिंग प्रैक्टिस लाइव करके दिखाएंगी जिसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस दिन भी समीरा के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो जरूर ट्यून इन कीजिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए. तो समीरा अगर कोई हमारा जो सुनने वाले हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में?
जरूर, आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकती हैं, समीराज विनोवा माइंड. आईजी भी है मेरा समीराज विनोवा माइंड या विनोवा माइंड करके, एंड वहां पे आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मेरी वेबसाइट भी है Winovermind, वहां पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड मैं इंडिविजुअल थेरेपीज भी करती हूँ और ग्रुप थेरेपीज भी करती हूँ. And it's a very beautiful profession and a warm setup I have for people.
So thank you so much, Samira. और वी लुक फॉरवर्ड अगले एपिसोड में आपकी एक प्रैक्टिस को लाइव करने का जो मौका मिलेगा. सो आई थिंक वील वेट फॉर दैट. और थैंक यू सो मच समीरा.
जरूर. नमस्कार.
नमस्कार. आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉडकास्ट सारथी.